भोले सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय, परम पावन दिव्य तपोभूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर प्रांगण, ऐसे सुंदर भवन में नित्य प्रति की इस सत्संग सुधा वर्षा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और उसी क्रम में हमारा जो शास्त्र है वर्तमान में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, भगवान की सुंदर कहलाने वाली बाल चपल लीलाएं, लेकिन अध्यात्म के सागर को अपने आप में समाहित किए हुए भगवान की ये सुंदर सी लीलाएं हैं, जहां पर सामाजिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व दोनों का विवेचन भगवान की ये मधुर लीलाएं करती हैं। सत्संग का एक ही कार्य है हमारी गलतियों को सुधारना। शास्त्र केवल हमारी गलतियों को सुधारता है और आगे का कार्य स्वयं हमको ही करना है। जिस प्रकार से नदी के किनारे आप खड़े हो जाओ तो नाविक नौका लाकर आपके समक्ष खड़ा कर देगा। अब उस नौका में आपको ही बैठना पड़ेगा, नाविक आपको पकड़ के बैठाएगा नहीं। क्यों भाई, ऐसा ही है कि नहीं? वो तो खाली नौका लाके खड़ा कर सकता, आप उस नौका में बैठ जाओ और आपको वो पार करा देगा। इसी प्रकार से शास्त्र आपके समक्ष संपूर्ण स्थिति का विवेचन करते हैं और उस स्थिति को यदि आप समझते हैं, ध्यान देते हैं और उसमें सुधार करते हैं तो आगे का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। जिसको हम लोग कहते हैं दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ये जो दुर्गम पथ है इसको प्रशस्त करने के लिए आपको शास्त्र को समझना पड़ेगा। सो इसी को कहते हैं मनन चिंतन, है ना? और फिर दृढ़ता निनिध्यासन कहलाती है, जब उसमें हम बिल्कुल दृढ़ीभूत हो जाते हैं, जब फिर हम कहीं टस से मस नहीं होते। और उसके लिए हमारे यहां प्रमाण है कि यदि आपका रास्ता सही है, हैं, गलत नहीं है, तो जैसा जैसा मान लीजिए आप कहीं नई जगह गए और वहां पर आपको जो है जाने से पहले जिसने पता बताया, बोले पहले एक पेड़ पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर वो पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें वो बताता, और जैसे जैसे आपको वो चीजें मिलती जाती वैसे वैसे आपको लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी प्रकार से शास्त्रों में बताए हुए जो निर्देश हैं कि यदि ऐसा होगा, यदि तुम्हारा मार्ग सही होगा तो तुमको इस प्रकार की प्राप्ति होगी, और ऐसी स्थिति की यदि प्राप्ति होती है तो इसका मतलब हमारा रास्ता सही है और हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, है ना? उसके लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपका बुखार, आपका ताप जो है शांत हो गया, फिर आप डॉक्टर से ये पूछने नहीं जाते हैं कि मेरा बुखार चला गया कि नहीं, क्योंकि वो तो आपका क्या बता रहा है? अरे शरीर बता रहा है कि नहीं बता रहा? शरीर स्वयं जो आपका पीड़ा अवस्था में था वो पीड़ा आपकी क्या हो गई? दूर हो गई। फिर आप डॉक्टर से ये पूछने नहीं जाते हो कि मैं जो है ठीक हो गया, बल्कि आप अपने मन से ही दवाई खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको स्वयं उसका अनुभव हो रहा है। बस यही अध्यात्म है। तो सत्संग, शास्त्र या जो है शास्त्रों का विवेचन करने वाले जो भी हैं, किसी भी रूप में एक ही चीज हमको दिशा निर्देश देते हैं कि हमको क्या करना है और क्या हम गलती कहां पर करते हैं, और उसी का हम लोग यहां पर, इसीलिए हमारे यहां जो है श्रुतियों में कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है ना। आप देखें बिल्कुल साधारण से साधारण रूप को भी असाधारण दिखाया गया और उसका उसी जो है एक श्रुति का ही आधार ये लीला है, जिसको हम लोग यज्ञ पत्नियों पर कृपा की लीला जो है हम लोग चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रातःकालीन जो सत्र है श्री प्रेमपुरी आश्रम का, इसको मुख्य रूप से हमारे जो अध्यात्म, जिसको आप लोग वेदांत कहते हैं, है ना, कि जिसके द्वारा हम अपने निस्वरूप को जान सकें और परमेश्वर को प्राप्त कर सकें, ऐसी जो चिंतन की अवस्था है, जो भी भगवान ने लीलाएं की हैं, साधारण रूप से जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं या शास्त्र की भाषा में जिसको परोक्ष ब्रह्म कहा जाता है, और अपरोक्ष तो है ही, और उस अपरोक्ष अवस्था को हम अपरोक्ष होने पर भी समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, गंभीर, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम परोक्ष का निर्धारण कर लें, है ना। क्योंकि जिस संसार में हम आप जी रहे हैं, इस परोक्षता का जो कालापन है, इसका जो मल है, इसके मल को हम जिस दिन दूर कर लेंगे, उसी दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण के शुद्ध होते ही, जैसे खान से निकला हुआ जो सोना होता है, उसके अंदर चमक है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, मिट्टी के रूप में है, लेकिन जिस क्षण उसको अंगीठी में तपाकर, भट्टी में तपाकर पूर्णतया उसके मल को दूर कर दिया गया, वो चमकता हुआ सोना बाहर आ गया। खान वाले ने, खान के ठेकेदार ने, उसने स्वर्ण के अंदर चमक नहीं डाली, कोई ऐसा पदार्थ नहीं डाला है जिससे सोने में क्या आ जाए, चमक आए। चमक तो सोने में थी, ब्रह्म तो अपरोक्ष है, लेकिन अभी हमारे लिए परोक्ष और परोक्ष से भी गया बीता है, क्योंकि अभी तो हमको परोक्षता का भी साधारण सा रूप समझ में नहीं आ रहा है। और यही यज्ञ पत्नियों पर कृपा, जो हमने श्रुति इसके लिए ली थी कि नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तत्सैष आत्मा विवृणुते तनुम श्याम। जिसके लिए ये अपने आप को प्रकट कर देता है उसी को प्राप्त होता है, और किसके लिए प्रकट करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि ज्ञान में कोई चीज बाधा नहीं है, सांसारिकता की कोई चीज ज्ञान में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है, जब आप श्रुतियों में जाते हैं तो श्रुतियां जो है एक एक है ना, एक आधी पंक्ति में महाराज आत्मा का विवेचन कर देती हैं। यदि आपका अंतःकरण शुद्ध है तो इतने से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी महाराज श्रुतियों के माध्यम से। जब उन्होंने पूछा ब्रह्म क्या है या आत्मा क्या है, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया सत्यम ज्ञान। देखो रटा हुआ कि नहीं रटा हुआ हाँ, रटा हुआ है महाराज, एकदम जवान पे रखा। लेकिन ना तो हमको सत्यता का बोध होता है, ना हमको ज्ञान स्वरूप होने का बोध होता, और ना हमको जो है अनंतता का बोध होता। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इनमें से एक भी चीज का हमको बोध नहीं है। रटा हुआ बहुत बढ़िया, हमने इतना ही परिचय है बस, परमेश्वर का इतना परिचय है, बताओ अब इससे सरल और क्या हो सकता है। ये अपरोक्षता है उसकी, इतनी साधारण सी भाषा में पूरा परिचय परमेश्वर का प्राप्त हो गया। अब इसी की व्याख्या में महाराज हजारों लाखों जो है ऋचाएं, मंत्र, वेद सब तैयार होते चले गए, लेकिन फिर भी बात हमको समझ में नहीं आती। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, सत्य स्वरूप है, सत्य का मतलब, सत्य का मतलब क्यों भाई, सत्य का मतलब क्या अध्यात्म में है, जो है सत्य का मतलब, है का मतलब है, उसमें कोई आवागमन आना जाना ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा फिर आ जाएगा फिर कहीं प्रकट हो जाएगा। वो है तो है, उसके होने की ही जो सत्यता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग सगुण रूप में सुनते हैं कि भगवान आए और अंतर ध्यान हो गए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अध्यात्म में तो हर समय है, सत्य स्वरूप है ना, कहते हैं जो कभी जो है किसी प्रकार से कहीं आवागमन को प्राप्त नहीं होता, यानी अभी भी है, हमारे रूप में है, हमारे अंग प्रत्यंग में है ना, क्योंकि इसीलिए उसको अनंत कहा गया। और ज्ञान स्वरूप है, उसमें महाराज अज्ञान नहीं है, है ना, भटकाव नहीं है। नंबर दो, उसमें जो है अतृप्ति की अवस्था नहीं है। ज्ञान जो है परम तृप्त अवस्था कहलाती है ना, जहां पर किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं है। अभी ये जान लूं, अभी वो जान लूं, जैसे समुद्र के पास कोई जो है जल लेकर जाए और उस सागर से कहे कि लो महाराज आप प्यासे हो जल पी लो, तो क्या कहलाएगा वो, क्यों भाई, समुद्र को आप जल पिला सकते हैं, हैं? तो जब आप समुद्र को जल नहीं पिला सकते उसी प्रकार से जब हमने ये जान लिया ज्ञान स्वरूप हैं हम, तो आपको फिर किसी भी प्रकार के ज्ञान की कमी नहीं रह जाती है, ये ध्यान रखना। तो ज्ञान तृप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, क्योंकि जब उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो वो परम जो है अमृत स्वरूप अपने आप को ज्ञान स्वरूप समझता है, वहां पर फिर उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये अप्रोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार कहलाता है। लेकिन समस्या यहां पर ये है कि ये बात हमको समझते हुए भी समझ में नहीं आ रही है ना। इसीलिए सत्य जो है उसी को हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जो है हर समय है, हर जगह है ना। यत्स्यात् भागवत कहती है ना, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा है। जो हम लोगों ने प्रथम दिन ये लिया था कि किस लिए, जिज्ञासु को केवल इतना ही जानना है, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो हर समय है, हर जगह, कभी भी न कहीं आता है न जाता है, हमारे रूप में है, हमारे अंग प्रत्यंग में नहीं, अणु परमाणुओं में महाराज बसा हुआ है, है? और इसीलिए जब हम सगुणता में, हमारे जो है श्रुतियों ने, स्मृतियों ने इस सगुणता को इतना महत्व दिया है। देखो आप सगुणता के महत्व को देखो। अगर ये देखिए आप, हमारी आंखों के ऊपर क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है ना। अब इस चश्मे को मैं उतार कर रख दूं तो ये सामने वाले जो ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं मेरे सामने से क्या हो जाएंगे? क्यों भाई? तो हमारे लिए सबसे पहला ब्रह्म क्या हुआ? अरे चश्मा हुआ कि नहीं हुआ? जितने लोग भी आप चश्मा लगाते हैं वो इस चीज का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि यदि आपके चश्मे को हटा दिया जाए, जिसको दूर का या पास का जिस भी रूप में है, अगर वो नहीं है चश्मा, तो महाराज वो कुछ भी देख, बड़ी सुंदर भगवान की मूर्ति लगी हो आप देख नहीं सकते, बड़ा सुंदर ग्रंथ आपके सामने हो लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। तो हमारे लिए सबसे पहला ब्रह्म कौन है? चश्मा। इसलिए ऋषियों ने कहा, वायु को कहा, जितने भी हमारे यहां शांति पाठ में इंद्र की भी हम लोग क्या करते हैं, स्तुति करते हैं नहीं करते हैं? देखो इंद्र की स्तुति क्यों की गई, जबकि इंद्र का कोई हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोग कोई अस्तित्व तो नहीं मानते हैं कि इंद्र तो बिल्कुल क्या है, बेकार चीज है ना। लेकिन जब हम वास्तविकता में हमारे ऋषियों ने उस परोक्ष ब्रह्म की व्याख्या करनी प्रारंभ की, तो महाराज उनको एक एक चीज में जब ब्रह्म का दर्शन हुआ है ना, इसको कहते हैं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, तब महाराज आपको अपनी एक एक चीज में ब्रह्म का क्या होने लगेगा। फिर ये चश्मा चश्मा नहीं रह जाएगा, ये माइक माइक नहीं रह जाएगा, ये कुर्सी, ये टेबल, ये जो है केवल साधारण सी चीजें नहीं रह जाएंगे। जब विचार दृष्टि आपके अंदर प्रकट होगी तो महाराज ये सब चीजें आपको ब्रह्ममय ही दिखाई देने लगेंगी। ये दृष्टि है, ये विवेक दृष्टि कहलाती है। विवेक दृष्टि से जैसे लकड़ी में अग्नि देखी जाती है, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर विस्तृत विवेक दृष्टि पैदा होती है तो महाराज ये जितना भी जो कुछ भी, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ब्रह्मा जी को यही समझाया भगवान ने कि जो कुछ है ब्रह्मा जी मैं हूं, मेरे ही द्वारा तुम सृष्टि बनाने जा रहे हो, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन महाराज ज्यों ज्यों सृष्टि बनती चली गई, ज्यों ज्यों वो अपने आप को एक से अनेक करता चला गया है ना, श्रुतियां कहती नहीं, वो अपने आप को क्या करता, एक से अनेक कर लेता है महाराज। ज्यों ज्यों वो अपने आप को एक से अनेक करता चला गया, त्यों त्यों उस माया का विस्तार होता गया और हम उस माया में फंसते चले गए और इतनी गहनता से हम फंस गए कि महाराज अपने वास्तविकता में जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, उन वासनाओं के संस्कारों को हमने तो बिल्कुल सत्य मान लिया और जो सत्य था उसको हमने भुला दिया, विस्मरित कर दिया है ना। है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। किसकी तरह? जिस प्रकार से यहां ब्राह्मणों का उदाहरण दिया गया, जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि सर्वोत्तम जो ज्ञान वेद कहलाता है महाराज, अंग उपांग जो भी है हमारा, सबका उपयोग करके पूर्णतया उन्होंने वेदाध्ययन किया। स्वयं ऋचाएं कहती हैं, यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, जिसको जानना चाहिए उसको ही नहीं जाना तो फिर ये ऋचाएं क्या करेंगी। वही स्थिति यहां पर है हमारा है ना, कि साधारण से छोटे से बालक अनुनय विनय करके, दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मणों से जो है तुच्छ भोजन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? तुच्छ भोजन की जो है जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, आप लोग यज्ञ कर रहे हो और आपके यहां भोजन बना होगा और आप जो है हमको भोजन प्रदान करें। हम छोटे छोटे बालक इस समय भूख से पीड़ित हैं, आप हमारी क्षुधा को शांत करें महाराज। लेकिन उन ब्राह्मणों ने वास्तविकता में क्षुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्ध मानिना, अपने आप को ज्ञान वृद्ध मानने वाले लेकिन बालकों की सी मूढ़ मुद्दी जिनकी थी, ऐसे जो है बड़े बड़े कर्मों में अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले लेकिन एक साधारण सी चीज को वो समझ नहीं पाए। देखो जो जिस भोजन को हम बड़ा क्षुद्र समझते हैं, आपको देखिए सुनाते हैं किस प्रकार से हमारे यहां श्रुतियां है ना। यदि आप जो है थोड़ा सा अपने ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो तैतरीय श्रुति में महाराज इस जो है भोजन की, और हमारे यहां देखो सबसे पहले ABCD है ये। ब्रह्म ज्ञान कहां से प्रारंभ होता है, हैं? मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। और उसको जो है किस तरीके से यहां पर अगर हम स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में तो आवश्यक है ही, ब्रह्म ज्ञान में तो सर्वत्याग की बात आती है महाराज। वहां पर तो हमारे यहां जो है राजा शिवी का उदाहरण आता है कि शरणागत अगर आ जाए तो महाराज उन्होंने पड़ने पर अपना हाथ भी काट के रख दिया। ये तो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान में तो महाराज अपने शरीर को भी न्यौछावर करने में देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो ये जान चुका है कि ये शरीर असली नहीं। कैसा है, सत्य है या असत्य है, हाँ, नश्वर है, आज है कल इसका कोई अस्तित्व नहीं है महाराज। इसलिए वो अपने शरीर को भी त्यागने में देर नहीं लगाता है। ऋषि दधीची हमारे राजा शिवी जिन्होंने अपने हाथ को काट के महाराज तलाजू में तौल दिया उस बाज पक्षी के लिए, मांसाहारी पक्षी के लिए। तो महाराज ऐसा जो विशेषता है ब्रह्म ज्ञान की, जहां पर कोई सीमा नहीं रह जाती। लेकिन अगर साधारण से इन ब्राह्मणों के जो कर्म थे, जो आंगिरस ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे महाराज और जानना था उनको स्वर्ग, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति के निमित्त जो महाराज, क्योंकि कंस को स्वर्ग ही सबसे बढ़िया दिखाई देता था, सुख ही बढ़िया दिखाई देते थे, इसलिए उसके राज्य में भी ये ब्राह्मण लोग बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते थे। तो शास्त्र श्रुतियां कहती है महाराज, साधारण शास्त्र की तो बात ही छोड़ दो, श्रुतियां यहां पर जो है उदाहरण दे रही हैं कि किस प्रकार से तैतरी श्रुति कहती है ना कंचन वसतौ प्रत्याच्छीत। कहते हैं वसतौ, वसतौ माने जहां पर हम रहते हैं उसको घर कहा जाता है वसतौ। कहते हैं कंचन, कंचन यानी यहां सोना नहीं है, कंचन का मतलब कोई भी जिसको आप लोग जो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच कहते हैं किंच, तो वही है यहां पर कंचन। कहते हैं ना कंचन वस्तव प्रत्याच्छीत, कहते हैं यदि आपके वस्तव आपके गृह में यदि कोई आ जाए ना प्रत्याच्छीत, उसको प्रतिकूल उत्तर नहीं देना चाहिए। श्रुति आदेश देती है देखो साधारण जीवन के लिए, असाधारण अध्यात्म के लिए तो ये आवश्यक है ही, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई साबुन नहीं बनाया है शास्त्र ने कि आप जो है 2 रुपए का साबुन खरीद के अपना अंतःकरण क्या कर लो, घर में जाके धो लो। ये अंतःकरण की शुद्धि के क्या बताए गए हैं, हाँ रास्ते बताए गए महाराज। और जिन्होंने ये किया उन्होंने बड़ी सहजता से उस ब्रह्म को क्या कर लिया, अपरोक्ष कर लिया कि नहीं कर लिया, अपरोक्ष कर लिया, जिसको आप लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार। कहते हैं तद व्रतम, श्रुति कहती है तद व्रतम, ये जीवन का व्रत है। ये कोई जैसे सरकार का कानून है, आप जो है बिना टिकट रेल में चढ़ गए, भाई मेरी मर्जी थी हम तो चढ़ गए, ऐसा नहीं चलेगा। जब टिकट चेकर आएगा तो आपको टिकट, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मेरी मर्जी थी महाराज इसलिए हम ट्रेन में बैठ गए, नहीं, आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। कहते हैं तद व्रतम, ये व्रत है महाराज, साधारण जीवन के लिए जो लौकिक सुख चाहते हैं उनके लिए भी, और जो अलौकिकता यानी परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या दूसरी भाषा में निस्वरूप की प्राप्ति चाहते हैं तो महाराज उनके लिए तो ये व्रत का पालन अति आवश्यक है। कहते हैं कोई भी आ जाए, कहते हैं तस्मात, इसलिए उसको क्या करना है, यया कया न विदया, जिस किसी भी प्रकार से, यया कया जिसको कहते हैं एन केन प्रकारेण, कहते हैं यया कया न विदया, किसी भी प्रकार से आपको उस आए हुए अतिथि को क्या करना है, अन्नम भोजन आराधि जो है देना है महाराज। और उसे ये नहीं कहना है कि मैं बनाने जा रहा हूं या बनाऊंगा, उसको ये कहना है देखो जरा वेद क्या देता है, शास्त्र क्या देता है हमको आदेश, कहते हैं कि भोजनम भोजन अन्नम आराधि, बोले तैयार है, आप ये चिंता मत करो कि भोजन बनेगा, बोले भोजन तैयार है, ये है ब्रह्म ज्ञान। जब अब जब तक आप, हम लोग करते क्या हैं, हम किसी विशेष रूप से उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, जबकि श्रुति स्मृति दोनों एक साथ कह रही हैं यच्चात सर्वत्र सर्वथा। ये तो हो गई महाराज स्मृतियों की बात, और श्रुति कह रही है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। और ये आपकी बिल्कुल साधारण सी परीक्षा है, और यहां पर जो है लौकिक रूप से जो है तीन उदाहरण दिए गए हैं। कहते हैं एक तो होता है मुक्तो इष्मा अन्नराध्यते, कहते हैं जो उत्तम जो होता है और उत्तम श्रेणी से परम श्रद्धा से उस अतिथि को भोजन कराता है उसको उत्तम जो है फल उसका प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से मध्यतो अन्यम राध्यम मध्यतो इष्मा, उसको महाराज मध्यम जो मध्यम श्रद्धा से और मध्यम कोटि का भोजन अतिथि को कराता है उसको महाराज मध्यम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अंततो अन्न राध्यम, कहते हैं जो बिल्कुल निकृष्ट रूप से अन्न प्रदान करता है, जो कुछ भी बासी खोसी जो आजकल का प्रचलन है, आपने देखा कि जो भी आपके यहां बच जाता है आप नौकर को उठा के दे देते हैं, जो भी आपके यहां बच जाता है आप अतिथि को खिला देते हैं, या गाय को दे देते हैं या कौए को दे देते हैं। तो इसका परिणाम है कि हमारे यहां सब कुछ होते हुए, धन धान्य संपन्न होते हुए भी हमारे यहां अशांति का वातावरण आपको अपने घर में अनुभव होता है ना, क्योंकि यथा कर्म तथा गति। शास्त्र कहते हैं महाराज ये जो एबीसीडी अंतःकरण शुद्ध करने का जो साबुन है वो परोक्ष ब्रह्म जो हमने बना लिया है, परोक्ष ब्रह्म को उसको जो प्रकट करने का अपने अंतःकरण में साधन है वो क्या है कि पूर्ण रूपेण जो हमारा मुख्य कर्म है कि उत्तम से उत्तम व्यवस्था जो की जा सकती है, जब हम उत्तम श्रद्धा रखते हैं तब हमको महाराज उत्तम फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज अंत में जो है उन्होंने क्या, या एवं वेद, श्रुति कहती है जो इस चीज के वेद यानी रहस्य को समझ गया है, या एवं वेद, श्रुति आदेश दे रही है महाराज कि जिसने इस रहस्य को समझ लिया है वो महाराज कर्म के यानी जो ये हमारा अंतःकरण शुद्धि का रास्ता है, अन्यथा ये सारे वेद शास्त्रों के गान हमारे लिए निरर्थक हैं, किसी कार्य के नहीं हैं। देखो एक अन्न को हमारे यहां पूरा तैतरी श्रुति, तो महाराज सबसे पहले यही भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ महाराज, जब उनके पिता वरुण ने भृगु ऋषि के जाओ अनुसंधान करो किसके द्वारा हैं लोग जीवित हैं, किसके द्वारा पाले जाते हैं, किसके द्वारा पैदा होते हैं, तो सबसे पहला रहस्य ही उनको यही दिखाई दिया कि अन्न के द्वारा ही, ये तो या इमानी भूतानि जायन्ते, है ना, तो ये जो पैदा होना रहना पलना जो कुछ भी है सब अन्न के द्वारा, पहला ब्रह्म ही उनको अन्न दिखाई दिया। और अभी भी हम मेरे अपने अनुभव के हिसाब से तो अभी तो हमने जो है अन्नमय कोष से ही ऊपर उठते हुए लोगों को देखा नहीं है, क्यों भाई क्या स्थिति है, अगर अन्नमय कोष से यानी इस शरीर से आप ऊपर उठ चुके हैं, भले शरीर किसका बना हुआ, अन्न का बना हुआ है कि नहीं, जो आप खाते हो उसी से तो इसका निर्माण हुआ है, और इसीलिए आपका शरीर अन्न को देखकर उधर की तरफ भागता है। लेकिन अन्नमय कोष से जिस दिन आप ऊपर उठ जाओगे तो महाराज सात दिन भूखे प्यासे रहने के बाद भी सत्संग सुनोगे तो महाराज आपको क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, क्योंकि आप शरीर से क्या हो गए। लेकिन सात दिन की तो बात छोड़ दो हैं? एक दो घंटे भी संभव नहीं है महाराज, ध्यान देना। तो वास्तविकता में हम जो है बाकी कोष तो छोड़ दो, मनोमय कोष या जो भी कोष है, लेकिन अभी तो अन्नमय कोष जो पहला कोष है महाराज, उससे ऊपर उठें तब प्राणों में आए, फिर प्राणों का नियंत्रण आप जब देखते हैं महाराज, आपने देखा होगा जो प्राणों का नियंत्रण कर लेते हैं उनको हम लोग योगी घोषित कर देते हैं महाराज। आंख में भाले की नोक रखकर आंख से जो है भाले की राड को टेढ़ा कर देते हैं, हाथ से कांच पीस देते हैं और ना जाने क्या क्या है। प्राणों के खाली नियंत्रण कर लेने से आपके शरीर में इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, प्राणमय कोष हो गया, भूख के नियंत्रण से प्राणमय कोष में आ गए, तब जाकर मनोमय कोष यानी मन से ही सारी क्रियाएं करने में वो संपन्न हो जाता हमारा, जो आपके लिए बहुत बड़ी चमत्कार की चीज हो जाती। कोई आपके मन की बात जान जाए, आपके मन के अंदर प्रविष्ट हो जाए, है ना। हमारे यहां तो ऋषि मनीषियों को ऐसा देखा गया और भगवान को भी अंतर्यामी इसीलिए कहा गया। तो मनोमय कोष में कहां पहुंचे हम बताओ, है कहीं परिस्थिति? अभी तो महाराज अन्नमय कोष में ही हम पड़े हुए हैं और उससे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और यहां तो महाराज इन वेद के जो है ज्ञाता ब्राह्मणों की स्थिति दिखाई गई। स्पष्ट शब्दों में सुखदेव जी कह रहे हैं, भूरि कर्माणो बालिशा वृद्ध मानिना। हम लोग जो है ज्ञान वृद्ध अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी हमने इस छोटे से तत्व को भी समझा नहीं है। इसका परिणाम है कि बरसों बरस की साधना, बरसों बरस का श्रवण भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रह जाता, जब हमारे शरीर में एकाएक कोई भयंकर बीमारी क्या लेती जन्म लेती है। अगर आप जाओ और आपके शरीर में एकाएक कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए और डॉक्टर कहे कि आपकी टांग को क्या करना पड़ेगा, क्यों भाई नजर आएगा ये वेद वेदांत कुछ है? बोलो, कुछ नजर नहीं आएगा महाराज। उस समय तो लगेगा कि मैं अब क्या होने वाला हूं, और जबकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है महाराज। ये देखो अन्नमय कोष में हम कहां तक गड़े हुए हैं, अपने आप को देखने की चेष्टा करें कि रास्ते में क्या क्या मिलेगा महाराज। ये ब्रह्म ज्ञान हम कहते नहीं, ब्रह्म ज्ञान क्या मिलेगा रास्ते में, वो पेड़ मिलेगा, ये है वो पेड़ जो रास्ते में मिलेगा महाराज, कि आपका पहले तो इस शरीर से पूर्णतया भाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि ये शरीर तुम नहीं हो, इस शरीर से ऊपर की कोई चीज हो महाराज। ये शरीर तो केवल नाव या नाव कहें या खोल मात्र कहें, यही इसका अस्तित्व है, लेकिन महाराज इसके धर्म को ही अपना धर्म मान लेने के कारण, इसके संपूर्ण धर्मों को अपना धर्म स्वीकार कर लेने के कारण हम इसकी सीमा से बाहर निकल ही नहीं पाते महाराज। और वास्तविकता में इतनी बड़ी गलती हम कर जाते हैं कि इस धर्म को इतना भयंकर स्वीकार कर लिया कि हम सारे वेद शास्त्र इसी शरीर को पढ़ा देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं, इस शरीर को वेद शास्त्र नहीं पढ़ाने। वेद शास्त्र तो पढ़ने वाला कौन है, जो इसके अंदर से बोल रहा है, जो इसके अंदर बैठकर सुन रहा है, जो इसके अंदर बैठकर बाहर की ओर देख रहा है, जो इसके अंदर बैठकर इस त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर रहा है महाराज, वो उसको वेद सुनाने हैं। हम महाराज इस शरीर को ही वेद सुना डालते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि शरीर के धर्मों के संग हम वेदांत को भी पीस देते हैं। जो गलती है वो ये है, और इसीलिए ये ज्ञान इन ब्राह्मणों की तरह हमारे अंदर देहाभिमान बनकर प्रकट हो जाता है। साक्षात परमेश्वर है ना, हमारे यहां जब देखने की बात की गई तो महाराज ये चश्मा भी ब्रह्म है, लेकिन यहां तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर जो अवतार लेकर आया वो याचक बनकर खड़ा है, लेकिन उसमें भी हमारी दृष्टि गढ़ने को तैयार नहीं है। उन ब्राह्मणों ने महाराज कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से वो बालक भगवान के पास आए और भगवान ने कहा तुम निराश मत हो, और भगवान को उन ब्राह्मणों के इस कर्म के ऊपर हंसी आ गई कि दुनिया भर का वेद वेदांत पढ़ा लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। इसका परिणाम कहते हैं तदुपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वरा। ऐसे उनके कर्मों को सुनकर भगवान हंस दिए महाराज, कहते हैं लेकिन तुम चिंता मत करो, बेजहार पुनर्गोपान, कहते हैं फिर से जाओ। और उन्होंने जो है उनकी धर्म पत्नियों के पास महाराज पत्नीशाला में भेजा, कहते हैं गत्वात् पत्नीशालायाम, वहां जाओ। और जाकर जब उन्होंने देखा तो यज्ञ के अनुसार जो उन्होंने गहने कपड़े सुंदर धारण किए हुए थे महाराज, और उन जो है विप्र पत्नियों से जाकर उन्होंने पुनः उसी प्रकार से प्रणाम किया। नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वंचा वंचासिना इतो विदुरे चरता कृष्णे ने हेषिता वयम। कहते हैं विप्र पत्नियों, आपको नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थोड़ी दूर पर जो है अपने भ्राता बलराम के संग आए हुए हैं, और उन्होंने हमको आपके पास भेजा है। गाश्चारयन सगोपाले शरामो दूर मागता भूजितस्य तस्यान्नम सानुगस्य प्रदीयताम। हम लोग ग्वाल बाल गल्लाम के संग जो है गाय चराते हुए दूर निकल आए, क्योंकि ये मथुरा और वृंदावन के सीमा रेखा की ये ब्राह्मण जो हैं, ये कंस से प्रभावित मथुरा के लोग हैं, और महाराज उनकी धर्म पत्नियां दोनों का जो है बिल्कुल स्पष्ट जो हमारी आपकी अवस्था है उसी का ये साक्षात उदाहरण है। क्योंकि मथुरा और जो वृंदावन के लोग हैं उसमें जो अंतर है वो यहां दर्शाया गया लीला के माध्यम से, कि कंस के यहां इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नियां भी उन्हीं के संग रहती थी, लेकिन दोनों के संग रहने पर जैसे लंका में रावण और विभीषण संग रहते थे, उसी प्रकार से एक ही जगह एक ही अन्न को खाने वाले, एक ही जीवन जीने वाले, लेकिन दोनों की जो बुद्धि में अंतर है यहां दर्शाया गया। तो जिस समय उन्होंने प्रार्थना की गाश्चारयन सगोपालय, कहते हैं सारे गोपालों के संग भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जो हैं, हम लोग गाय चराते चराते दूर मागता हम दूर आ गए हैं, और हम इस समय जो है भूजतस्य बहुत भयंकर भूखे हैं सब लोग, इसलिए आप हमको कुछ जो है प्रदीयताम कुछ जो है थोड़ा सा तस्यान्यम, इसलिए थोड़ा सा भोजन दे दें। कहते हैं इतना सुनना था महाराज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो है कल हम लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है अपनी पत्नियों को कुछ पढ़ने नहीं देते थे महाराज, इसलिए वो भगवान की जो लीलाएं उनको सुनने को मिलती थी, गाय की जो चारा काटने वाली ग्वालिने या दूध बेचने वाली ग्वालिनों से, इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज उन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की झांकी बस गई, उनके कर्म बस गए महाराज हैं, और वो रात दिन भगवान से मिलन का जो है चिंतन करती रहती थी। और जैसे ही उनको महाराज ये सुना, उनके कान में ये शब्द गए कि कृष्ण और बलदाऊ हमारे जो है घर के निकट इस प्रकार से भूख जिनको जो है सता रही वो हमारे पास आए हैं महाराज, तत्क्षण उन्होंने जो है क्या किया, श्रुत्वा च्युतमुपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकः। कहते हैं जो उनके दर्शन की तत्क्षण अभिलाषा कर बैठी थी महाराज, तुरंत महाराज उन्होंने संपूर्ण अपनी सामग्री को चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजनहि, कहते हैं चारों प्रकार के भोजनों को उन्होंने महाराज जो हमारे यहाँ भक्ष भोज्य ले चोष्य माना जाता है, उस समय चारों प्रकार की सामग्रियों को अपने बर्तनों में महाराज सजा लिया। कहते हैं निषिद्यमाना पतिभिर भ्रातभिर बंधुभिर सुतये, इतने लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, पति ने भाई ने बंधु ने पुत्रों ने महाराज, लेकिन किसी के रोकने से वो नहीं रुकी, क्योंकि महाराज भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घ सुते धृताशया, बहुत दीर्घ काल से उनकी मिलने की इच्छा थी महाराज, जिसको हम लोग जिज्ञासु कहते हैं या साधारण भाषा में भगवान का परम भक्त कहते हैं, अपनी उस आशा के लिए उन्होंने महाराज सबकी अवहेलना कर दी, किसी की भी आज्ञा को उस समय नहीं सुना, और इसी को शास्त्र की भाषा में परम वैराग्य कहा जाता है ना, जब हम सब कुछ छोड़कर केवल और केवल मात्र उसके हो जाते हैं महाराज। तो ऐसी अवस्था में जब वो महाराज संपूर्ण सामग्री लेकर यमुना के तट पर पहुंची, और वहां पर उन्होंने जो है पूर्ण जिसको कहते हैं नटवर वेशधारी उस छोटे से जो है कान्हा को उस कन्हैया को देखा महाराज, जो केवल उनके कानों में शब्दों के रूप में अभी तक विराजमान थे, ऐसा है ऐसा है सांवला है सलोना है, नाना प्रकार की कथाएं उनकी सुनती रहती थी, लेकिन महाराज उनका दर्शन उन्होंने कभी नहीं किया था। जिस समय उन्होंने महाराज उस झांकी को और एकदम प्रत्यक्ष झांकी को एकाकार किया महाराज, जो उनके हृदय में बसी झांकी थी वो, और जो महाराज साक्षात भगवान वहां पर जो है यमुना के तट पर बलदाऊ के संग बैठे थे, कुछ ग्वाल बाल भी वहां बैठे थे, कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जिस समय उन्होंने जो है भगवान को जो है अपने अंदर विराजमान किया। अंतः प्रवेश सुचिरम परिरभ्य तापम प्राज्ञम यथाभिमतयो विजहुर नरेन्द्र। हे नरेन्द्र, हे राजा परीक्षित, जिस समय ये जो शरीर जो हमारे रूप है, यह मैं हूं, ये मेरा है, हम जागृत में और स्वप्नावस्था में, सुखदेव जी कहते हैं जिस प्रकार से जब जागृत होता है ये जीव और जब महाराज स्वप्नावस्था में होता है ये मैं मेरा करता रहता है, लेकिन जब ये सुसुप्ति की अवस्था आती है उस समय महाराज हमारी जो बुद्धि है प्राज्ञम प्राज्ञ के संग जुड़ जाने के कारण, उस परमात्मा के संग जुड़ जाने के कारण वो परम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, उसकी मैं मेरेपन की सारी सत्ता समाप्त हो जाती है और सुसुप्ति की अवस्था में उसको कुछ भी याद नहीं रह जाता। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से महाराज उन गोपिकाओं यानी जो ब्राह्मण पत्नियां थी महाराज उनके हृदय में जब भगवान पहुंचे और भगवान को उन्होंने अपने हृदय के ईश्वर से एकाकार करा दिया तो उनकी भी वही स्थिति हो गई, परम शांत अवस्था को प्राप्त हो गई। देखिए ये शुद्ध अंतःकरण की स्थिति है। यहां पर न वेद हैं न शास्त्र हैं, लेकिन महाराज कर्मों के साबुन से जिस जो श्रुति आदेश देती है, कहते हैं तुम्हारे घर में भोजन तैयार नहीं है लेकिन अतिथि से कहो बिल्कुल तैयार है, झूठ बोलो, शास्त्र कह रहा झूठ बोलो है? और हम कौन सा झूठ बोलते हैं? अतिथि को देख के ही हमारी क्या होने लगती है, बड़ा कठिन है हमारा, है ना? इसीलिए दुर्गम पथस्तत, जरा स्थिति देखिए यहां पर क्या है, किसको मिला महाराज, कैसे मिला? सुखदेव जी कहते हैं जैसे वो प्राज्ञ के संग जुड़ने पर बुद्धि सुसुप्ति की अवस्था में महाराज परम शांति को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान के सुंदर दर्शन करके, देखो अंदर जो दर्शन था वो और बाह्य दर्शन यानी परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्म दोनों क्या हो गए, एक हो गए, इसको आत्मसाक्षात्कार कहते हैं महाराज, है ना? जहां पर दोनों क्या हो जाएं, एक हो जाएं, जो अंतःकरण के सुने हुए ईश्वर थे वो और महाराज जो साक्षात बैठे थे वो दोनों एक रस हो गए और वो गोपिकाएं परम शांत अवस्था को प्राप्त हो गईं और उस समय भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हि वा। कहते हैं सबके हृदय की जानने वाले सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब उन्होंने देखा भगवान ने कि ये सब कुछ सबकी अवहेलना करके महाराज केवल और केवल मेरे दर्शन के लिए यहां पर आई है, कोई इनकी दूसरी आशा नहीं है और संपूर्ण आशाओं को त्याग करके केवल मेरी आशा के लिए आई है, तब महाराज उन्होंने जो है कहते हैं हंसते हुए प्रहसितानना कहते हैं मुस्कुराते हुए आनंद यानी मुख से जो है उन्होंने सब कुछ जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा स्वागतम महादेवियों तुम लोगों का जो है स्वागत है, आओ हम तुम्हारा क्या स्वागत कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी एक ही कामना है स्वार्थ दर्शना, तुम मेरी केवल दर्शन की इच्छा से यहां आई हो और प्रेम पूर्ण हृदय तुम्हारा जो है भक्ति भाव से जो भरा हुआ हृदय है इसलिए मैं जानता हूं अलावा तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन के कोई दूसरी इच्छा नहीं है और तुम्हारे जैसे जो है प्रेम पूर्ण हृदय वाले इस स्वागत के योग्य हैं। कहते हैं भगवान ने उनका क्या किया, स्वागत किया। पहले भी शायद आपको बताया है एक वो होता है जो भगवान को मानता है और एक वो होता है जिसको भगवान मानते हैं। श्रुति में फिर से एक बार जाइए, यही चीज आप श्रुति की भाषा में कह दिए यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्सई शात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसके लिए ये अपने आप को प्रकट करता है, एक मानते तो भगवान को सब है लेकिन एक वो होता है जिसको भगवान मानते हैं। यहां पर भगवान स्वयं उन ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म में एक रत्ती भी हिचक नहीं की, जो कुछ उनके पास था सब ज्यों का त्यों महाराज भर लिया अपने बर्तनों में। ये नहीं सोचा कि क्या रख दूं क्या बचा लूं क्या देना है क्या नहीं देना है क्या पति को देना, कुछ भी सोचा नहीं। जैसे भगवान कहते हैं जो है वो मुझको चाहिए, तो यहां पर जो दिखाया गया भगवान के द्वारा कि महाराज स्वयं भगवान उनका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, भगवान कहते हैं संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को जो समझने वाले महापुरुष हैं या बुद्धिमान पुरुष हैं, वो मुझ आत्मा से ही, मुझ कृष्ण से ही परम प्रेम या परम प्रीतम मानकर प्रेम करते हैं और उसके लिए उनके अंदर कोई दूसरी कामना नहीं होती। किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का छिपाव, किसी प्रकार की दुविधा, किसी प्रकार का द्वैत, कुछ भी वहां पर नहीं होता महाराज। ये भगवान ने परिभाषा बताई है यहां पर इन ब्राह्मण पत्नियों की, इनके अंदर क्या क्या नहीं है और अपने आप के दोनों के जो है स्थितियों का आप विवेचन करें। यहां पर कोई व्यवधान नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई द्वैत नहीं, सब कुछ वहां समाप्त हो चुका है और केवल केवल है मिलन की कामना। वहां पर दूसरी कोई कामना ही नहीं है, इसलिए भगवान उनका स्वागत कर रहे हैं। और भगवान ने उनका स्वागत करने के बाद कहा कि देवियों, तुम्हारी जो है इच्छा जो है पूरी हो गई, मैं प्रेम से तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। तुमने मेरा दर्शन करने की जो इच्छा की थी वो तुम्हारा पूरा हो गया। यद याद देव यजनम पतयो वो दुजातया स्वासन्नम परस्यन्ति युष्माभिग्रह मेदिना। कहते हैं तुम्हारा अभिनंदन है, लेकिन तुम मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब अपनी यज्ञशाला में, अपने पतियों की यज्ञशाला में वापस लौट जाओ। कहते हैं क्योंकि जो तुम्हारा गृहस्थ धर्म है, भगवान कहते हैं ये है परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म का एकाकार रूप। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा दर्शन कर लिया तुमने मेरा, तो अब तुम मेरी हो गई। भगवान कहते हैं यथा योग्य जो तुम्हारा कर्म है उसको निर्वाह करना प्रथम तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुमने मेरा जो दर्शन करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा जो कर्म है वो क्या है। कहते हैं तुम वापस अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ और तुम्हारे जो गृहस्थ पति हैं जिन्होंने तुम्हारे संग यज्ञ करने का निर्णय लिया है और उनके यज्ञ को तुम्हारे बिना जो है वो पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए उनके यज्ञ में सम्मिलित होना तुम्हारा आवश्यक है, इसलिए वापस जो है चली जाओ। जब भगवान के मुख से ये शब्द सुने, देखो कितनी विचित्र बात है, क्योंकि जब हमको दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए यानी जो मिलना था वो मिल गया, अब ये संसार बिल्कुल नकली लगने लगा। संसार कैसा लगने लगा? अरे भाई फिर से आप एक बात बताओ कि आपके हाथ में एक असली नोट है, एक नकली नोट है, आप संभाल के कौन सा नोट रखोगे? हैं? नकली की भी वही संभाल करोगे? तो ठीक यही स्थिति किसकी है? ब्राह्मण पत्नियों की महाराज। अब उनको इस दुनिया में कोई तत्व, इन कर्मों में कोई तत्व दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनके अंदर बाहर परोक्ष अपरोक्ष ईश्वर क्या हो गया, वहां दो है ही नहीं। क्योंकि भगवान साफ कह रहे हैं कि प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र बांधव सब कुछ समाप्त करके जो मुझसे प्रेम करता है वो स्थिति यहां पर ब्राह्मण पत्नियों की है। इसलिए लेकिन अब तुमको समझ में आ गया ये सब नकली है, इसलिए अब नकली नाटक करो जाके। कौन सा नाटक करो? क्योंकि अब ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? नाटक हो गया, लेकिन अविवेकी के लिए नाटक नहीं है। अभिवेकी के लिए क्या है? उसके लिए तो नकली नोट ही परम सत्य है महाराज। तो आगे की घटना आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि समय जो है वो बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज चैत्रवद एकम शनिवार दिनांक 23 अप्रैल स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्रीमती शारदा देवी एवं रमेश चंद्र अग्रवाल प्रेरित भजन संध्या के अंतर्गत अतिथि विशेष के रूप में जयवंतीबेन मेहता उपस्थित रहेंगे एवं श्रीमती ममता अग्रवाल एवं साथियों द्वारा 2 घंटे तक भक्ति संगीत का कार्यक्रम कल सायं 5:30 से 7:30 के दरमियान होगा। सभी सत्संगी भाई बहन इसमें सादर आमंत्रित है। आज के श्रेय सिंह के यजमान है श्रीमती सुभाषिनी पी नेरुलकर की ओर से श्री माधव नेरुलकर के जन्मदिन के अवसर पर तथा श्री गोपाल प्रसाद धानुका की ओर से श्री चौथमल जी धानुका की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य उपस्थित हो तो मुझे महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।